नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद की रोकथाम के लिए नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन किया जाएगा। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपग्रह की मदद से की जाएगी निगरानी। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने इस वर्ष होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। 42,467 पदों पर नियुक्ति के लिए 37 परीक्षाएं होंगी आयोजित। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने देश की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया है। यह रणनीति आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया है।
आतंकवाद की समझ और आतंकी घटनाओं के पीड़ितों के अधिकारों पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए भारत अपना प्रयास जारी रखेगा। देश ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक ढांचा तैयार करने की दिशा में कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत अपनी आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति प्रहार को आगे बढ़ाएगा, जिसका उद्देश्य सभी आतंकवादी कृत्यों को अपराध घोषित करना तथा आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुँच से वंचित करना है। भारत आतंकवादी उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर प्रयास जारी रखेगा। दस्तावेज में भविष्य की उभरती आतंकवादी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही आतंकवाद को किसी विशेष धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता या सभ्यता से जोड़ने के किसी भी प्रयास को सख्ती से खारिज किया गया है। सरकार ने आतंकवाद और हिंसा के प्रति अपनी अधिक शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराया है। साथ ही आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति समर्थन की प्रतिबद्धता करते हुए किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा। यह गोलमेज सम्मेलन 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है। पिछला सम्मेलन वर्ष 1999 में हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश की सभी पुलिस लाइन में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हाई स्कूल और दीदी की रसोई की शुरुआत की जाएगी। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रखते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये तीन नई सुविधाएं सभी पुलिस लाइनों में चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि पुलिस केंद्रों के उन्नयन के लिए आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि कृषि ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन किया जाएगा। विधान परिषद में कृषि विभाग के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री यादव ने कहा कि 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस मिशन का गठन होगा। उन्होंने कहा कि बिहार कृषि एक्सीलरेशन मिशन के गठन के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य को कृषि स्टार्टअप का हब बनाने और कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए ग्रामीण कृषि हाट के विकास का लक्ष्य है। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में 326.62 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। मंत्री के जवाब के बाद सदन में 3,446 करोड़ रुपए से अधिक का विभागीय बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि बिहार में गुजरात की तर्ज पर सहकारिता आधारित खेती की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसलिए सहकारिता खेती की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
अहमदाबाद बैठक में भी मैंने कहा था कि बिहार में कॉपरेटिव खेती की भी बड़ी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अब किसान के पास कोई बहुत ज्यादा जमीन अब किसी के पास बचा नहीं। पहले था किसी के पास 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ जमीन, अब जमीन का भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो हम लोग कॉपरेटिव खेती की भी संभावना को तलाश रहे हैं।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि चालू खरीफ विपणन मौसम में अब तक 29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को 6,400 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में उर्वरक की कालाबाजारी के आरोप में चालू वित्तीय वर्ष में 104 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही 419 प्रतिष्ठानों के प्राधिकार पत्र रद्द किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण के उत्तर में ये जानकारी दी।
किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु विभाग प्रतिबद्ध है। महोदय, किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर लगातार छापेमारी कराया गया है। महोदय, इस वर्ष 2025-26 तक में महोदय अनियमितता के विरुद्ध 104 उर्वरक प्रतिष्ठान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। महोदय, एवं कुल 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों का उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द किया गया है। महोदय,
राज्य सरकार ने कहा है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में मुखिया की मनमानी की शिकायतों की जांच करवाई जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राजद के सौरभ कुमार के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वार्ड सदस्यों को योजनाओं के आवंटन की भी जांच करवाई जाएगी। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों को भी मनरेगा समेत अन्य कोष के तहत योजनाओं के चयन और राशि खर्च करने का अधिकार देने पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार को भी पत्र भेजा जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली राजस्व कर्मचारियों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की उचित मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
हमने कहा कि वो तमाम विषय हम लोग देखेंगे, आप हड़ताल समाप्त करिए और जो उचित मांगे हैं सरकार उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी, क्योंकि अभी राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर जो अभियान चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, जो परिमार्जन का टारगेट दिया गया है 31 मार्च तक उसको पूरा करना हमारी प्राथमिकता है, और जो इसमें सहयोग करेंगे सरकार उसके साथ पूरी सहानुभूति के साथ उनकी बातों का समाधान का प्रयास करेगा।
गौरतलब है कि राजस्व कर्मचारी ग्रेड पे बढ़ाने समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 10 दिन से हड़ताल पर हैं। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध तरीके से अफीम और गांजा की खेती की पहचान करने तथा इसके दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपग्रह का सहारा लिया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। निगरानी के लिए भाष्कराचार्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू संरचना संस्थान और उन्नत टाटा संस्करण अनुसंधान संस्थान की मदद ली जाएगी। मुख्य सचिव ने नशीले पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने इस वर्ष होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष 42,467 पदों पर नियुक्ति के लिए 37 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें सबसे अधिक 11,389 पद स्टाफ नर्स के हैं। इसकी प्रक्रिया अगस्त महीने तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा कनीय अभियंता, फार्मासिस्ट, शल्य कक्ष सहायक और परिधापक यानी ट्रेसर के पदों पर अप्रैल माह तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 173 पदों के लिए होने वाली नियुक्ति के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च निर्धारित है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से शुरू होगा। मूल्यांकन कार्य 10 मार्च तक चलेगा। वहीं मैट्रिक की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 2 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा। पटना जिला प्रशासन ने जिले के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को बच्चों पर विशेष निगरानी रखने और उन्हें अकेला नहीं छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ममता वर्मा की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जिले में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की खबरों के बीच यह निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार सभी महिला पर्यवेक्षिका और आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका तथा सहायिका को बच्चों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। पटना की विशेष निगरानी अदालत ने रिश्वतखोरी के 35 वर्ष पुराने मामले में नवादा के विद्युत विभाग के तत्कालीन कनीय अभियंता सुदामा राय को 1 वर्ष कारावास और 20,000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। निगरानी में दोषी कनीय अभियंता को 300 रूपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। पटना जिले के अतमलगोला थाना क्षेत्र के सबनीमा गांव के पास एक एम्बुलेंस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एम्बुलेंस सवार एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के सकरी सरैया के पास एक तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। सुपौल जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 1 में अगलगी की घटना में मां बेटी की झुलसकर मौत हो गई। गया जिले के लुटुआ थाना क्षेत्र के मराव गांव में सीआरपीएफ ने सर्च अभियान चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। सभी विस्फोटकों को बम निरोधक दस्ते की मदद से नष्ट कर दिया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सकरी और रैया मिल चालू करने को शक्कर कारखाना संघ से करार, सहकारिता विभाग और राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ के बीच हुआ MOU। दैनिक जागरण ने लिखा है, विधानसभा में घोषणा, बच्चों का मोबाइल स्क्रीन टाइम नियंत्रित करने को बनेगी नीति। प्रभात खबर लिखता है, बिना वारंट के IG को गिरफ्तार करने पहुंची आंध्र पुलिस, पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है, भारत टैक्सी पर ड्राइवरों की कमाई का बेस रेट तय होगा, 80% मुनाफा लौटाएंगे। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, विधायक फंड बढ़ाने की मांग पर पक्ष और विपक्ष ने सरकार को घेरा। आज अखबार की सुर्खी है, रांची से दिल्ली जा रहा चार्टर विमान क्रैश, 7 की मौत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद की रोकथाम के लिए नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन किया जाएगा। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपग्रह की मदद से की जाएगी निगरानी। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने इस वर्ष होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया। 42,467 पदों पर नियुक्ति के लिए 37 परीक्षाएं होंगी आयोजित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।